arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास, वाचक स्वर पद्मा मणि।
फ्रांस की क्रांति के पूर्व आर्थिक दशा एवं आर्थिक स्थितियां। पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था, राजपरिवार का विलासितापूर्ण जीवन, विदेशी युद्धों में बढ़ता हुआ खर्च, राष्ट्रीय ऋण, अभिजात वर्ग का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, प्रांतीय चुंगियां तथा राजकीय अपव्ययता कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने राजकोष की स्थिति को अत्यंत शोचनीय बना दिया था। नेपोलियन ने एक बार सत्य ही कहा था, पुरातन व्यवस्था ने अपने आप को अपनी ही वित्तीय व्यवस्था की गड़बड़ी द्वारा नष्ट कर लिया। पहला, फ्रांस की दिवालियापन। फ्रांस में आय से अधिक व्यय था। घाटे की पूर्ति हेतु सरकारी पदों को बेच दिया जाता था, जिसके कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता था। प्रतिवर्ष नया ऋण लिया जाता था। वार्षिक आय उस ब्याज से भी कम थी जो राष्ट्रीय ऋण पर दिया जाना था। इस तरह फ्रांस दिन प्रतिदिन दिवालिया होता जा रहा था। दूसरा, राजा एवं रानियों की अत्यधिक विलासिता। राजदरबार की विलासितापूर्ण फिजूल खर्चियों के कारण उसे राष्ट्र की कब्रगाह कहा गया है। लुई 14वें ने करोड़ों रुपए वर्साय का राजमहल बनवाने में तथा लुई 15वें ने युद्धों में एवं विलासिता में तथा लुई 16वें की पत्नी मैरी के अत्यंत ही फिजूल खर्च के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। सन 1789 में इस विलासिता के पीछे $2 करोड़ व्यय हुआ। तीसरा, पक्षपातपूर्ण एवं कर व्यवस्था का दूषित होना। फ्रांस में करों का अत्यधिक बोझ निम्न मध्यम वर्ग तथा किसानों पर था। जहां एक साधारण व्यक्ति 4 एकड़ भूमि पर 14 लीवर कर देता था, वहां एक कुलीन 12 एकड़ भूमि पर 9 लीवर कर देता था। साधारण मनुष्यों को 3 प्रकार के कर और देने होते थे, पहला शासन को, दूसरा चर्च को, तीसरा जागीरदार को। कुछ प्रत्यक्ष कर तथा कुछ परोक्ष कर थे। भूमि कर, टेली या ताई। यह कर मुख्य रूप से भूमि तथा घरेलू संपत्ति पर लगाया जाता था। कुलीन एवं पादरी इस कर से मुक्त थे। टेली कर से मुक्त होना सामाजिक उच्चता का प्रतीक समझा जाता था। टेली कर का दिया जाना सामाजिक हीनता तथा छोटेपन का प्रतीक था। यह कर वास्तव में किसानों के लिए बड़ा कष्टप्रद एवं असंतोषजनक था। पोल टैक्स, यह कर किसानों द्वारा आयकर के रूप में दिया जाता था। टाइथ कर, साधारण जनता को टाइथ नामक धार्मिक कर देना पड़ता था। प्रत्येक जिले में इसकी दरें अलग अलग थी। आय का लगभग 1/10 टाइथ कर के रूप में वसूला जाता था। इस पर से भी जनता में बहुत ज्यादा असंतोष था। पेंशन एवं भेंटे, फ्रांस के सम्राट का धन का एक बड़ा भाग पेंशनों में खर्च हो जाता था। 1779 से 1789 के बीच पेंशनों पर खर्च की जाने वाली राशि अनुमानतः 86 करोड़ लीवर थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम एवं सप्तवर्षीय युद्ध पर खर्च, लुई 15वें ने पोलैंड और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्धों और सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में जो हुआ था उसमें भाग लेकर राज्य की वित्तीय स्थिति को कमजोर बना दिया। लुई 16वें ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर 1775 से 1783 ईस्वी के बीच फ्रांस का तो दिवाला ही निकाल दिया। अब इन युद्धों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय तथा शोचनीय हो गई। गाबेल कर या नमक कर, यह कर अप्रत्यक्ष कर था तथा नमक पर लगता था। सरकार का नमक पर एकाधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए तथा अपने पशुओं के लिए नमक खरीदना पड़ता था। नमक खरीदने की अवहेलना करने पर दंड दिए जाते थे। यह कर भी पक्षतापूर्ण था। नमक की चोरी व हेरा फेरी के अपराध में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 व्यक्तियों को कैद, 500 को फांसी, निर्वासन अथवा गुलामों की तरह कार्य करने भेजा जाता था। इस कर से भी जनता में काफी असंतोष था। विभिन्न प्रकार के सामंतीय कर। पहला, बानालित। यह कर किसानों के लिए आवश्यक था। शराब बनाने के लिए किसान अंगूर को अपने सामंत की भट्टी में भेजें, गेहूं उसकी चक्की से पिसवाएं, रोटी उसके तंदूर में सिकवाएं और इन सब कामों के बदले सामंत को पैसा दें। सामंतों अथवा कुलीनों के ये अधिकार बानालित कहलाते थे। दूसरा, कोरवे, बलात् श्रम का अधिकार। तीसरा, बेनावे। अपने जिले में शराब बेचने का एकाधिकार सामंत को रहता था, जो बेनावे कहलाता था। चौथा, सां। किसी सामंत की जागीर की सीमा में जिन व्यक्तियों की भूमि होती थी उसे सां देना पड़ता था। पांचवा, पेयाज। कुलीनों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में नावों, सड़कों, पुलों के उपयोग के समय किसानों द्वारा सामंत को दिया जाने वाला धन पेयाज कहलाता था। छठवा, दुआ दे कोलौबिये ए देशास। सामंतों के मनोरंजन एवं शिकार खेलने के दौरान किसानों की फसल नष्ट होने पर उन्हें कोई क्षतिपूर्ति न देना सामंतीय विशेषाधिकार था, जो बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद था। सातवां, तेराज शापांस। फसल की कटाई के समय निश्चित मात्रा में किसानों द्वारा सामंतों को अनाज दिया जाता था, यह तेराज कहलाता था। खेतों की सीमाओं को निश्चित करते समय लिया जाने वाला कर शापाज कहलाता था। कष्टदायक वसूली एवं जनता में तीव्र असंतोष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों की वसूली का तरीका बड़ा ही कष्टदायक तथा दोषपूर्ण था। अधिकांश करों का मुख्य बोझ किसानों पर था। एक साधारण व्यक्ति की आय का लगभग 80% शासन, चर्च और सामंती करों की अदायगी में चला जाता था। कर लगाने की पद्धति जितनी पक्षतापूर्ण थी, उन्हें वसूलने का तरीका भी उतना ही भ्रष्ट और आक्रामक था। शासन के ठेकेदारों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से जबरदस्ती कर वसूला जाता था। साधारण वर्ग के लोग करों के बोझ से लदे हुए थे, जिसके फलस्वरूप इन लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था और यही आक्रोश सन 1789 की क्रांति के रूप में आगे चलकर विस्फोटित हुआ। 1789 ईस्वी की क्रांति का आरंभ। सन 1789 को फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें को धन की आवश्यकता हुई। विवश होकर वह पुरानी सामंती सभा स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए सहमत हो गया। 1614 ईस्वी के बाद से स्टेट्स जनरल का कोई अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। 175 वर्षों के बाद इस सभा का अधिवेशन लुई 16वें द्वारा बुलाया गया। लुई इस सभा के माध्यम से नई ऋण लेने और कर लगाने की सहमति प्राप्त करना चाहता था। इस सभा में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व था, किंतु तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ नहीं बैठते थे। इनका अलग अलग अधिवेशन हुआ करता था। 17 जून सन 1789 को तीसरे वर्ग के सदस्यों ने इस आधार पर कि वे जनसंख्या के 96% का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने पाया कि जिस हाल में अधिवेशन होने वाला है वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा है। तीसरे वर्ग के सदस्य अधिवेशन करने हेतु दृढ़ संकल्प थे, इसलिए वे पास के शाही टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और वहीं उन्होंने फ्रांस का संविधान बनाना प्रारंभ किया। तीसरे वर्ग यानी राष्ट्रीय सभा के इस प्रकार के कार्यों से लुई 16वां बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उनकी सभा को भंग करने का प्रयास किया तथा यह अफवाह भी फैली कि सभा के प्रमुख सदस्यों को बंदी बना लिया जाएगा। लुई के इन कार्यों से जनता नाराज हो गई और हजारों की संख्या में वहां यानी टेनिस कोर्ट पर एकत्रित होने लगी। थोड़ी देर बाद शाही अंगरक्षक भी जनता से आकर मिल गए। भीड़ ने 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टील नाम के कारागृह को घेर लिया। 4 घंटे के बाद जनता ने बेस्टील का फाटक तोड़ दिया और वहां के सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक थी। आज भी फ्रांस में 14 जुलाई का दिन राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लुई 16वां समझ गया कि जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह और नई क्रांति कर दी है। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार लुई 16वें ने जनता से समझौता कर लिया और अब 14 जुलाई 1789 ईस्वी के पश्चात लुई 16वां नाम मात्र के लिए सम्राट बना रहा और उसकी शक्ति एवं अधिकारों को जनता द्वारा सीमित कर दिया गया।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।